नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी रखेगा। भारत ने बांग्लादेश से विख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे की पैतृक परिसंपत्ति ध्वस्त नहीं करने का आग्रह किया। इस ऐतिहासिक भवन के संरक्षण में सहायता का भी प्रस्ताव दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अद्यतन कराने को कहा। रूस ने अमरीका की 100% टैरिफ लगाने की धमकी खारिज की, कहा अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। झारखंड, ओडिशा और बिहार सहित कई राज्यों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान। और हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और धर्म के आधार पर भेदभाव लाने के लिए जानबूझकर कराया गया। चीन के तियानजिन में कल शाम शंघाई सहयोग संगठन परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुरजोर तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी साजिश और वित्त पोषण करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मौजूदा अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक स्थिरता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्टार्टअप्स और नवाचार को लेकर पारंपरिक औषधि तथा डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई पहल किए हैं। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में समन्वय बढ़ाने के लिए अधिक व्यापार, निवेश और आदान प्रदान जरूरी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना को सशक्त किए जाने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने रूस और उसके सहयोगियों पर 100% आयात शुल्क लगाने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि उनका देश अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद श्री लावरोफ ने कहा कि रूस पहले से ही कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और नए प्रतिबंधों की चुनौतियों से भी निपट लेगा। रूस के विदेश मंत्री की टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आई है कि अगर रूस 50 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर सहमत नहीं होता है तो उस पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। रूस की एक समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका ने पहले भी यूक्रेन के साथ समझौते के लिए 24 घंटे और 100 दिन की समय सीमा तय की थी। श्री लावरोफ ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ईरान के वैध अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने बांग्लादेश से विख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की ढाका स्थित पैतृक परिसंपत्ति ध्वस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। भारत ने इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है। मैमनसिंह जिला स्थित इस ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के फैसले को गंभीर खेद का विषय बताते हुए बांग्लादेश से इसे दोनों देशों की साझा संस्कृति के प्रतीक संग्रहालय में बदलने का आग्रह किया गया है। ये ऐतिहासिक भवन सत्यजीत रे के और विख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी का है। ये वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है। इस पुरानी इमारत को गिराए जाने के समाचारों के बाद विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा वोट हासिल करने के लिए क्षेत्रवाद और धर्म के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये प्रवृत्ति खतरनाक है क्योंकि इससे समाज में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इससे देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वो केवल किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना सकती जबकि अनेक दल ऐसे ही आचरण के दोषी हैं। अदालत ने कहा कि AIMIM का विधान पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन करता है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकृत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य रूप से धर्म को बढ़ावा देना गैर कानूनी नहीं है लेकिन इसके या जाति के आधार पर वोट मांगना चुनावी विधानों का उल्लंघन है, जिसके आधार पर पार्टी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 210 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील वर्थवाल ने बताया कि दूसरी तरफ देश का आयात जून महीने में 3.71% कम होकर 53 अरब 92 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष के जून महीने में 56 अरब डॉलर का आयात हुआ था। इस वर्ष जून में वस्तु तथा सेवा क्षेत्र के कुल निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और ये पिछले वर्ष जून के 63 अरब 83 करोड़ डॉलर से बढ़कर लगभग 68 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में देश का व्यापार घाटा 18 अरब 78 करोड़ डॉलर हुआ था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अद्यतन कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उंगली की छाप और आंखों के स्कैन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 5 वर्ष का होने पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार 7 वर्ष की आयु होने के बाद भी अपडेट नहीं कराए जाने पर आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राधिकरण ने इस संदर्भ में ऐसे बच्चों के आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराने संबंधी संदेश भेजना शुरू कर दिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
देश में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विश्व में AI क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जगत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार का सभी के लिए AI और AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से न केवल आर्थिक विकास बल्कि जीवन को बेहतर बनाने, समावेशिता सुनिश्चित करने और समानता को बढ़ावा देना भी है। AI क्षेत्र को और विकसित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया AI पोर्टल, राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम और AI युवा बूट कैंप जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनके माध्यम से छात्रों और श्रमिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक केंद्र भी पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए AI उपकरण अपना रहे हैं। सरकार शिक्षा और उद्योग को जोड़ने वाले कार्यक्रमों और नए केंद्रों के वित्त पोषण से AI अनुसंधान में भी निवेश कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी शीर्ष राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी भारत को वैश्विक विकास से जुड़े रहने में मदद कर रही है। समाचार कक्ष से मनोज।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है कि मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का लेबल लगाए जाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में आ रही इस तरह की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर खाद्य पदार्थों का स्वस्थ विकल्प अपनाने के बारे में अलग से परामर्श जारी किया गया था, जिसमें वसा और अत्यधिक चीनी से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कैंटीन, कैफेटेरिया और बैठक कक्ष में बोर्ड लगाने को कहा गया था। इसका उद्देश्य देश में मोटापे की बढ़ती समस्या के प्रति सचेत करना था। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पूरे तेलंगाना में सड़क किनारे अतिरिक्त 22 सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ट्रक चालकों के लिए ईंधन स्टेशन, विद्युत वाहन चार्जिंग प्वाइंट, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, पार्किंग क्षेत्र, भोजनालय और शयन गृह सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित कर रहा है।
इस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज और जो हमारे ट्राइब्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए देश के सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ पर विकास हो और प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। पिथौरागढ़ जिले के वानी क्षेत्र में थल पिथौरागढ़ मार्ग पर कल शाम एक वाहन के नदी में गिर जाने से ये हादसा हुआ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों पर सजा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने कहा कि शांति रक्षा मिशनों की सफलता के लिए जवाबदेही तय करना रणनीतिक रूप से आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि शांति रक्षकों को खतरनाक इलाकों में सेवा देते हुए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों के लिए सजा सुनिश्चित नहीं हो पाती। ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये परामर्श जारी किया गया है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय नागरिकों को ईरान यात्रा से पहले स्थिति पर सतर्कता से नजर रखने और भारतीय प्राधिकरणों से जारी परामर्शों से भी ध्यान देने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान राजस्थान पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जिनामणि ने कहा कि झारखंड, बिहार और ओडिशा के कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है।
जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था जो झारखंड और दक्षिण बिहार में, अभी वो दक्षिण बिहार के पास पहुंच चुका है और उसके कारण से दक्षिण बिहार और झारखंड का जो इलाका है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का जो ऑरेंज अलर्ट आज जारी है। उत्तर भारत का बात करें तो जो डिप्रेशन था उत्तर पश्चिम राजस्थान गंगानगर के पास अभी है और उसी के कारण से उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली में जो है वो लाइट रेनफॉल का संकेत दिया गया है।
भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी दीपिका ने FIH हॉकी प्रो लीग में विश्व की शीर्ष टीम नीदरलैंड्स पर शानदार फील्ड गोल के लिए वर्ष 2024-25 का पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार हॉकी में व्यक्तिगत कौशल के लिए दिया जाता है, जिसे वैश्विक प्रशंसक वोट द्वारा तय करते हैं। भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ताशकंद में आज उज्बेकिस्तान के साथ दूसरा और अंतिम मैत्री मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। सोमवार को पहला मैत्री मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। दोनों टीमें अगले महीने AFC अंडर-20 महिला एशियन कप क्वालिफायर की तैयारियों में लगी हैं। क्वालिफायर में भारत का सामना इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार से होगा। प्रत्येक ग्रुप की विजेता टीमें और दूसरे स्थान की शीर्ष 3 टीमें अगले वर्ष थाईलैंड में फाइनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी आज टोक्यो में जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इन खिलाड़ियों में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद निखिल। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने का समाचार आज सभी अखबारों में छाया हुआ है। हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा ने सुस्वागतम शुभांशु शीर्षक से विशेष आलेख सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं शुभ वापसी। दैनिक जागरण ने लिखा है धरा पर शुभ आगमन से हर्षित भारत का मन। पंजाब केसरी की सुर्खी है 18 दिन का प्रवास 22.5 घंटे की यात्रा। अमर उजाला इसी खबर पर लिखता है 2027 में लॉन्च होगा गगनयान मिशन। दैनिक भास्कर के शब्द हैं अंतरिक्ष में बड़ी भारत की ताकत, 1,40,00,000 किलोमीटर का सफर कर लौटे शुभांशु। दैनिक ट्रिब्यून ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के पक्ष को चीन में आयोजित SCO बैठक में रखने का समाचार मुख्य पृष्ठ पर दिया है। हरिभूमि, पंजाब केसरी और देशबंधु ने विदेश मंत्री के इन शब्दों को प्रमुखता दी है, आतंकवाद के गुनहगारों को नहीं बख्शेगा भारत।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी रखेगा। भारत ने बांग्लादेश से विख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे की पैतृक परिसंपत्ति ध्वस्त नहीं करने का आग्रह किया। इस ऐतिहासिक भवन के संरक्षण में सहायता का भी प्रस्ताव दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अद्यतन कराने को कहा। रूस ने अमेरिका की 100% टैरिफ लगाने की धमकी खारिज की। झारखंड, ओडिशा और बिहार सहित कई राज्यों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान और हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।